بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے, اور مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے اس حدیث کو سنا, اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ حدیث کی کتاب شروع کراتے وقت پر پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سناتے ہیں. تو میں نے اپنے بڑوں کی اتباع میں یہ حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنا دی. یہ تسلسل راویوں کا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے, یعنی ہر راوی نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے. میں نے اپنے کئی مشائخین سے یہ حدیث مسلسل بالاولیت سنی ہے, خصوصاً میرے استاد اور مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مشکات شریف شروع کرتے وقت پر یہی حدیث مسلسل بالاولیت سب سے پہلے سنی ہے. جی پڑھیے. کتاب الفتن. پہلی چیز ہے ما قبل کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے, اس سے پہلے کتاب الرقاق ہے, اور رقاق کے بعد فتن لا رہے ہیں. ربط یہ سمجھ میں آتا ہے دونوں کتابوں میں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں رقت قلبی سے محروم ہو جاتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. رقاق, رقت قلبی, قلب کی نرمی اور قلب کے اندر اچھے صفات اور اخلاق, اور جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے امور کے معاملے میں رقت قلبی اور قلبی صفات سے محروم ہو جاتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دونوں کے درمیان کے اندر پہلی مناسبت سمجھ میں آتی ہے. دوسری مناسبت دونوں کے درمیان میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب الرقاق کے اندر جتنی بھی ابواب ذکر کیے گئے مختلف زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں حدیثیں ہیں, ابواب ہے, جب ان احادیث پر انسان عمل نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں کتاب الرقاق کے حدیث پر عمل نہیں کرے گا تو وہ انسان فتنے کے اندر لازماً پڑ جائے گا. اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے کتاب الرقاق کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک دوسری وجہ دونوں کے درمیان میں ربط کی سمجھ میں آتی ہے. فتن اس کی لغوی کیا تحقیق ہے, तो फितनतुन की ये लफ्ज जमा है, फितनतुन वाहिद, फितन उसकी जमा। लुगत के एतबार से उसके कई मानी हैं, आजमाइश और इम्तिहान ये भी एक लुगवी माना है। दूसरा माना आता है किसी चीज का अच्छा लगना। तीसरा माना आता है दलाल और गुमराही। चौथा माना आता है गुनाह। पांचवा माना आता है कुफ्र। छठा माना आता है रुसवाई। सातवां माना आता है अजाब। आठवां माना आता है फरेफ्तगी। नौवां माना आता है सोने और चांदी का पिघल जाना। दसवां माना आता है दूसरे को गुमराह करना। ग्यारहवां माना आता है जुनून, पागलपना। बारहवां माना आता है मेहनत। तेरहवां माना आता है माल। चौदहवां माना आता है औलाद। और पंद्रहवां माना आता है लोगों की राय का किसी मामले में मुख्तलिफ होना। ये 15 के करीब लफ्ज़ फितने के लुगवी माने बयान किए गए हैं। सोने चांदी को पिघलने का जो माना बयान किया गया उसकी तौजीह इस तरह करेंगे कि जब कान में से मादिन, कान में से सोना और चांदी निकलता है तो उसमें मिट्टी के जर्रात मिले हुए होते हैं, फिर उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो ये मिट्टी के जर्रात को अलग करके जो सोना चांदी अलग किया जाता है, इस अमल को भी अरबी में फितने से ताबीर किया जाता है। दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की धातें हैं ये जमीन से निकलती है, लेकिन कुछ धात ऐसी है कि जब वो जमीन से निकलती है तो उसके अंदर मिट्टी, पत्थर, ये चीजें बहुत मामूली होती है, जैसे कि लोहा। और बहुत सी धात ऐसी है कि जब जमीन से बरामद होती है तो उसके अंदर मिट्टी, जर्रात, कंकर वगैरह बड़ी मकदार में होते हैं। सोना चांदी में यही होता है, इसीलिए दुनिया के अंदर सोने चांदी की कीमत ज्यादा है कि जब इसको जमीन से निकाला जाता है तो उसमें मिट्टी वगैरह के जो जर्रात है वो इस कदर ज्यादा होते हैं कि उसमें से सोना बहुत कम मकदार में हासिल होता है। कई टनों के टन मिट्टी को जब साफ किया जाता है तो उसमें से थोड़ा बहुत सोना बरामद होता है। तो जमीन में से सोने वाली मिट्टी को निकाल करके उसमें से मिट्टी को अलग करना और खालिस सोने को अमल अलग करना, ये रिफाइंड का काम होता है। उसको भी अरबी जबान के अंदर फितने से ताबीर किया जाता है। और फितना और आजमाइश ऐसी चीज है कि उसी के जरिए इंसान के ईमान और आमाल की सफाई होती है, वरना पता नहीं चलता कि किस इंसान के ईमान में निफाक मिला हुआ है, किसके ईमान में शिर्क और कुफ्र मिला हुआ है। उसके लिए फितना यानी आजमाइश की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के निखर करके सामने आता है कि किसके अंदर ईमान कितना, अच्छे अखलाक और आमाल कितने और बिगाड़ कितना। इसीलिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ बिअय्यकुमुल मफ्तून, कि तुम्हारे अंदर कौन जो है इस फितने के अंदर मुब्तला है। दूसरी जगह पर है अहसिबन्नास अयुतरकु अयकुलु आमन्ना वहुम लायुफ्तनुन, वहां भी यही मादा इस्तेमाल हुआ कि ईमान निखर के कब सामने आएगा, जब आजमाइश होगी ईमान की। और आजमाइश कैसे होगी, मुखालिफ हालात के जरिए से, तो समझ में आएगा कि कामिल ईमान किसके अंदर है और किसके अंदर निफाक और बनावट है। तो ये लुगवी माने की इस्तिलाही माने के साथ एक खास तरह की मुनासबत है कि जिस तरह मादिन से निकलने वाली धात में से खास अंदाज की सफाई की कार्रवाई करके मिट्टी गर्द गुबार वगैरह को अलग करके खालिस मादनियात को सोने को चांदी को प्लेटिनम को अलग किया जाता है, इस तरीके से ये आजमाइश है, ये फितने हैं कि जिसके जरिए खालिस ईमान और निफाक के दरमियान में फर्क होता है। इस्तिलाही तारीफ क्या फितने की, ये तो इसकी लुगवी तारीफ हो गई। इस्तिलाही तारीफ, जिन चीजों में इंसान के ईमान और आमाल की आजमाइश होती है, जिन चीजों में इंसान के ईमान और आमाल की आजमाइश होती है कि कौन मुस्तकीम रहता है, कौन मुतरद्दिद और परेशान होकर भटक जाता है, उसको फितना कहा जाता है इस्तिलाह में। तो ये हो गई फितने की पहली इस्तिलाही तारीफ कि जब इंसान के ईमान और आमाल का इम्तिहान लिया जाए और देखा जाए कि कौन ईमान और नेक आमाल पर मुस्तकीम रहता है, जम के रहता है, और कौन मुतरद्दिद हैरान परेशान होकर के भटक जाता है, इसको कहा जाता है इस्तिलाह के अंदर फितना। दूसरी इस्तिलाही तारीफ, इंसान के जहन फिक्र कल्ब यानी दिल जिस्म को तकलीफ रंज और नुकसान होवे, ऐसे हालात का पेश आना इंसान के जहन को, इंसान की फिक्र को, इंसान के दिल को, इंसान के जिस्म को तकलीफ रंज नुकसान हो, ऐसे हालात का पेश आना, इसको फितना कहा जाता है। ऐसे कहते हैं ना आदमी के, मैं फितने में हो गया हूं, नऊजुबिल्ला फितने में मुब्तला हो गया हूं। तो फितने में क्या होता है कि आदमी का जहन परेशान, फिक्र बेचैन, दिल उलझा उलझा रहता है, जिस्म घुल जाता है, जिस्म को रंज तकलीफ हुआ करती है। तो ऐसे हालात इंसान की जिंदगी के अंदर पेश आए कि जिन हालात की वजह से इंसान का जहन है, फिक्र है, कल्ब है, जिस्म है, उसको तकलीफ रंज और नुकसान हो गए, उसका नाम फितना रखा जाता है। ये दूसरी तारीफ हो गई। तीसरी तारीफ फितने की, फासिद गुमराह नजरियात में इंसान का मुबतला हो जाना, फासिद गुमराह नजरियात में इंसान का मुबतला हो जाना। कहते हैं नहीं कि आदमी सहाबा के बारे में शक करता है, गोया एक फासिद नजरिए में मुब्तला हो गया। ये आदमी कुरान मजीद के मुतवातिर होने के बारे में नऊज़ बिल्ला शक कर रहा है, क्या मतलब हुआ कि ये गुमराह सोच में मुब्तला हो गया है। तो फासिद गुमराह नजरियात के अंदर इंसान जब मुब्तला हो जाता है उसको भी फितने से ताबीर किया जाता है। चौथी तारीफ इस्तिलाही, नफसानी ख्वाहिशात के अंदर इंसान का मुब्तला हो जाना ये भी फितना है। अफराइत मनि तखज इलाहु हवा, जो अपना माबूद और खुदा अपनी ख्वाहिश को बना ले गए, ख्वाहिशात नफसानी को खुदा मान ले गए, यानी आदमी ख्वाहिशात नफसानी के तकाजे पूरे करने वाला बन जावे, उसको भी फितना कहा जाता है। ये चारों इस्तिलाही तारीफ से एक बात समझ में आई कि फितना अलग अलग नौइयत का होता है। बास फितनों का ताल्लुक अकाइद से है, बास फितनों का ताल्लुक नजरियात से है, बास फितनों का ताल्लुक अफकार से है, और बास फितनों का ताल्लुक आमाल से है। ये तमाम इस्तिलाही तारीफ को सामने रख करके खुलासा समझ में आता है कि अकीदे के फितने भी होते हैं, नजरियात के फितने भी होते हैं, अफकार के फितने भी होते हैं और आमाल के फितने भी हुआ करते हैं। और इस वक्त के ऊपर उम्मत चारों तरह के फितनों के अंदर नऊज़ु बिल्लाह मुब्तला है। और खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो तरतीब कायम की है तो किताबुल फितन को अखीर में ला रहे हैं कयामत के साथ साथ। मालूम हुआ कि जैसे जैसे जमाना कयामत के करीब पहुंचेगा चारों तरह के फितने दुनिया में रोनुमा बकसरत होंगे, और कसरत से चारों तरह के फितने दुनिया के सामने आएंगे, जिसका मुशाहदा इस वक्त के ऊपर हो रहा है। अब यहां एक बात और समझनी है कि मुअल्लिफ ने किताबुल फितन कायम करके अखीर तक उसको ले गए और उसी के जिम्न के अंदर सहाबा के फजाइल मनाकिब, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल मनाकिब वगैरह को बयान किया है, बहुत दूर तक किताबुल फितन को ले गए। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि फितनों के बाब के साथ फजाइल और मनाकिब का क्या ताल्लुक, कि किताबुल फजाइल किताबुल मनाकिब अलग से कायम करना चाहिए कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और मनाकिब का बयान होता, सहाबाए किराम के फजाइल और मनाकिब का बयान होता, क्या वजह थी कि उसको किताबुल फितन के अंदर लाए फजाइल को मनाकिब को वगैरह को। तो दो बातें समझ में आती है। पहली बात, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिद्वानुल्लाही ताला अलैहि मजमाइन की अजमत हमारे दिल दिमाग में हो इसके हम मुकल्लफ हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की अजमत हमारे दिल दिमाग में हो इसके हम मुकल्लफ हैं। ये अजमत हम अपने अमल से साबित करें इस इम्तिहान और आजमाइश के अंदर हम लोग मुब्तला हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत, सहाबा की अजमत का एतिकाद हमारे अमल से हम साबित कर देवे, इस आजमाइश के अंदर हम लोग सब जो है मुब्तला है। इसलिए कि किसी की मोहब्बत अजमत और अकीदत इसका ताल्लुक दिल से है, और आदमी के दिल के ऊपर कोई वाकिफ नहीं हो सकता है कि दिल के अंदर क्या है, अगर दिल के अंदर नऊज़ु बिल्ला उसके अंदर सहाबा की अकीदत नहीं है, अजमत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खाली जबान से जाहिर करे कि मैं तो सहाबा किराम को बहुत ऊंचा मकाम का मानता हूं, अंबिया के बाद उन्हीं का मकाम मानता हूं, हालांकि दिल में नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि आदमी सही बोल रहा है? उसके अमल के जरिए से साबित होगा कि ये वाकई सहाबा की अजमत और मोहब्बत का कायल है, ये साबित होगा उसके अमल से। और अमल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमा दिया, माना अलैहि वासहाबी, कि जिसके ऊपर मैं और मेरे सहाबा ने जिंदगी गुजारी वो अहले हक लोग होंगे। तो जो आदमी हजराते सहाबाए किराम जैसी जिंदगी अमली गुजारेगा तो अब जाहिर में लोगों को पता चलेगा कि हाँ उसके दिल के अंदर सहाबा की मोहब्बत है, सहाबा की अजमत है, सहाबा की अकीदत है। तो हम सब मुकल्लफ है सहाबा की अजमत, मोहब्बत, अकीदत हमारे दिल से हो और उसको हमें अपने अमल से साबित करना है। अब उस अमल से उसको साबित करने के लिए बड़ा इम्तिहान है, बड़ा फितना है, बड़ी आजमाइश है कि जो चीज दिल में हो उसको आदमी अमल से साबित करके दिखावे, दोनों के दरमियान में रब्त और जोड़ हो कि दिल का एतकाद, दिल की अजमत, दिल की मोहब्बत और जाहिर का अमल दोनों में जोड़ हो। ये एक बड़ी आजमाइश की चीज है। इस चीज को बतलाने के लिए खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल फितन ही के अंदर मनाकिब फजाइल वगैरह को बयान किया है। एक दूसरी वजह समझो कि किताबुल फितन ही के अंदर मनाकिब और फजाइल क्यों है। आखिरी दौर के अंदर इस उम्मत में बड़े बड़े खतरनाक फितने आएंगे। जैसे जैसे जमाना कयामत के करीब जा रहा है खतरनाक फितने इस उम्मत के सामने आएंगे। उसमें से एक बहुत बड़ा फितना आएगा कि अंबिया और सहाबा जो इस उम्मत के लिए मेयार ईमान है उन लोगों को लोग बुरा भला कहने लगे, तानो तशनी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये आखिरी दौर के बड़े फितनों के अंदर से एक बड़ा फितना है। इसलिए कि सहाबाए किराम के ईमान को मेयार बताया, आमिनू कमा आमनन नास, और अन्नास से मुराद हजरत सहाबाए किराम के सहाबा का ईमान तो मेयार है कि अगर तुमको सही ईमान तो सहाबा जैसा ईमान लाओ। तो जिनका ईमान मेयार बतलाया गया उन लोगों की मोहब्बत दिलों में होनी चाहिए, उसके बजाय लोग उनको गालियां देंगे, तानो तशनी करेंगे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखियां करेंगे, बेअदबी करेंगे। तो इस उम्मत को आखिरी जमाने के अंदर जो फितने पेश आने वाले हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा फितना है कि उम्मत के अकाबिरीन के ऊपर लान तान सबो शतम जबान दराजी करना, यह अजीम फितना है। और उसको हदीस के अंदर सराहतन बयान किया गया, लान आखिर हाजिहिल उम्मत अव्वला औ कमा कौल, कि इस उम्मत का आखिरी तबका अव्वल तबके के बारे में लान तान करने लग जाए। और ये आखिरी दौर में हम लोग चल रहे हैं और अव्वल तबका सहाबा किराम का है तो उनके बारे में लान तान करने लगे, इससे बड़ा और क्या फितना होगा। इसलिए कि जिनके जरिए ये दीन की अमानत हम तक पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत तक दीन की अमानत पहुंची सहाबा के वास्ते से, अब इन्हीं सहाबा किराम के ऊपर इंसान लान तान करने लगे तो फिर दीन कैसे सलामत रहेगा। लिहाजा आखिरी दौर के फितनों में अजीमुशान फितना एक ये भी आने वाला है कि हजरत सहाबाए किराम के बारे में लोग गुस्ताखियां करेंगे। इसीलिए किताबुल फितन के अंदर लाकर के खतीब तबरीजी बताना चाहते हैं कि देखो तुम अपनी जबान को अपने कलम को महफूज रखना, साहबा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी गुस्ताखी मत करना, ये इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना होगा, अपने आप को बचा बचा करके रखना। ये एक दूसरी वजह समझ में आती है मनाकिब फजाइल वगैरह को फितन के जेल में लाने की। अब पढ़िए हदीस शरीफ।
رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما لا ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد
لا يكون منه الشيء
لا يكون منه الشيء
لا يكون منه,
لا يكون منه الشيء قد نسيته فاذكره كما
فأراه فأذكره
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه واتفق عليه।
फसल अव्वल की पहली हदीस हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल है। सहाबी का जब नाम आए तो उनके नाम के साथ रिदवान की दुआ कर देनी चाहिए, और रावी सहाबी के साथ दुआ में तमाम सहाबा को शामिल कर लेना चाहिए। जैसे यूं पढ़ेंगे अन हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु व अन्हुम قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, यहां काम के माने हैं खिताब करने के, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खिताब फरमाया, बयान फरमाया, और उसी को हम वाज और नसीहत से भी ताबीर करते हैं कि कामा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने नसीहत फरमाई, वाज फरमाया। और इस काम का हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा जमाने के अंदर जो फितने आने वाले हैं उसके मुतालिक सहाबाए किराम को खबर दी, इत्तला दी सहाबाए किराम को। और ऐसे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल मुबारक यही था कि बयान है, नसीहत है, जुमा का खुतबा है, हुजूर हमेशा अक्सर व बेशतर कयाम की हालत में देते थे, कयामन इरशाद फरमाते थे। इसीलिए हमारे बाज़ अकाबिर का तर्ज तो ये रहा कि वो निकाह का खुतबा भी कयामन देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान नसीहत फरमाई और बयान फरमाया, खुतबा दिया, और उसके अंदर वो तमाम बातें जिक्र फरमा दी जो कयामत तक पेश आने वाली है। नफी और इस्तिस्ना के जरिए हसर का माना करेंगे, मा और इल्ला, कि कयामत तक जितनी भी चीजें पेश आने वाली है वो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। देखिए यहां कयामत तक होने वाले बड़े बड़े फितनों का बयान मुराद है, कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहानहु व ताला ने वही के जरिए से इत्तला दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस बयान के जरिए अपने उम्मत को वो बातें बतला दी। इससे कोई भी आदमी इल्मे गैब कुल्ली साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान के अंदर जो सहाबाए किराम से मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ रिवायतों में मनकुल है, बहुत सारे वो फितने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी जमाने में पेश आए, खिलाफत राशिदा में पेश आए, बाद में पेश आए, उनका बयान मौजूद नहीं है। इससे मालूम हुआ कि तमाम की तमाम चीजों का इल्म, इल्म गैब कुल्ली अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया नहीं था। जैसे एक मिसाल, आपके आखिरी दौर के अंदर जो है मुसैलमे कज़्ज़ाब अस्वद आनसी के फितने पेश आए, झूठे मुद्दईया ने नबूवत के, उसको अलग से हुजूर ने बयान फरमाया है एक ख्वाब की ताबीर की शक्ल के अंदर। तो ये एक अंदाज होता है किसी चीज की ताबीर करने का, और खास तौर पर छोटे जब अपने बड़ों की कोई बात नकल करते हैं तो इसी अंदाज में नकल फरमाते हैं। जैसे कि अपने जिस बड़े के साथ मोहब्बत, अकीदत, अजमत आपके दिल में होती है तो आदमी कहता है ना कि आज तो हमारे हजरत ने ईद उल अजहा के मौके पर ऐसा बयान किया कि बस ईद उल अजहा की सारी बातें बयान फरमा दी। हालांकि कोई भी आदमी एक बयान के अंदर एक मौजू के मुतालिक तमाम चीजों का ऐसा कर लेवे, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब छोटे अपने बड़ों के साथ अजमत, मोहब्बत, अकीदत के अंदाज में कोई बात बयान करते हैं तो वो इसी अंदाज से बयान करते हैं। तो हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाज, वो बयान सुना, और हुजूर ने जो बड़ी बड़ी बातें बयान फरमा दी फितनों के मुतालिक, उसकी ताबीर इन्होंने ये की कि कयामत तक पेश आने वाले तमाम फितनों को हुजूर ने बयान फरमा दिया। और देखिए एक दूसरी बात क्या होती है, जब बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है तो उसी को भी कुल्ली बयान से लोग ताबीर करते हैं। बड़ी बड़ी चीजें, जैसे किसी ने आपके सामने रोटी रख दी, सालन रख दिया, तो आप क्या कहेंगे, सब खाना आ गया हमारे सामने। हालांकि कोई आपको अलग से पूछे भाई ठंडे का इंतजाम था, कहना ठंडा तो नहीं था, फिर कैसे सब हो गया। अरे भाई साथ में सलाद और अचार का इंतजाम था, कहना नहीं था, फिर कैसे सब खाना आ गया। अरे भाई मीठा कुछ था, कहना मीठा नहीं, फिर कैसे सब खाना आ गया। लेकिन जब उस मौजू के मुतालिक बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है तो उसको भी लोग कुल्ली से ताबीर करते हैं। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े फितने बयान फरमा दिए तो उसको इन्होंने ताबीर फरमाया कि कयामत तक पेश आने वाले तमाम फितनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बयान फरमा दिया। अब हुआ क्या, हफीजहु मन हफीजहु व नसीहु मन नसीहु। आमतौर पर ऐसा ही होता है, मजमे में सामईन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। बाज़ सामईन कैसे होते हैं, जो बयान करने वाले की हर हर बात को या अक्सर बात को महफूज कर लेते हैं। अल्लाह ने उनको दिमाग ऐसा दिया हुआ होता है, कुव्वत हाफ़ज़ा उनका ऐसा होता है कि बयान करने वाले ने जो बात बयान की वो सब उनको याद रह गई या अक्सर याद रह गए। और बाज हजरात ऐसे होते हैं कि उनको अक्सर तो किया, अकल बात भी उनकी अकल में रह जावे तो काफी है, अकल मिकदार अकल में रह जाए तो भी काफी है। दोनों तरह के लोग मजमे में मौजूद हुआ करते हैं। तो हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला ने यही बात फरमाते हैं कि हुजूर के उस बयान मुबारक में जिसमें हुजूर ने वो फितनों का तस्किरा फरमाया उसमें से बहुत सारी बातें बहुत सो को याद रह गई, बहुत सारी बातें लोग भूल गए। जैसे सबक का हाल कि सबक के अंदर जो है बाज तलबा को बातें याद रह जाती है, बाज उसको भूल जाते हैं, फिर तकरार के जरिए उसको ताजा करते हैं, मुताले के जरिए ताजा करते हैं, और बाज तो ऐसी नसीहत मनसिया हो जाती है कि फिर वो हमेशा के लिए अलविदा हो जाती है। तो इस तरह का मामला बयान फरमाया। आगे फरमाते हैं कद अलिमहु अस्हाबी हाउला, मेरे ये दोस्त मेरे ये साथी लोग इस वाकिये से वाकिफ है, जानकार है, उसको जानते हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बयान मुबारक में जितने हजरात मौजूद थे वो तमाम के तमाम हजरात में से जितने जिंदा रहे सलामत रहे उन लोगों में से बहुत सोने वो बात वो वाकिया भी मालूम है कि इस तरह का वाकिया हुआ, हुजूर ने बयान फरमाया और किसी को याद रहा, कोई भूल गया। फिर आगे एक दूसरी अहम बात फरमाते, وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ। हजरत अबू हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी कोई चीज जब सामने आती है, हालांकि हुजूर ने वो बात बयान में फरमाई थी लेकिन हम भूल गए, लेकिन जब वो चीज अमलन सामने आती है तो हमको याद आ जाता है, हाँ ये बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, ये बात तो हुजूर ने बयान में तस्करे में फरमाया था। और आम मदन यही हुआ करता है कि बहुत सारी बातें हम लोगों को याद नहीं रहती, लेकिन जब वो चीज होती है तो सामने आ जाती है। जैसे आपको कोई कहे कि भाई आपने नूर कलिया कभी खाया, कहने हमने नूर कलिया तो कभी नहीं खाया। अब कोई आपके सामने लाके खिचड़ी कढ़ी पेश कर दे, अच्छा इसको नूर कलिया कहते हैं, इससे तो हमारा हर रोज ताजा दम होता है। तो बहुत सारी चीज इंसान भूल जाता है, लेकिन जब वो चीज सामने आती है तो वो चीज इंसान को फौरी तौर पर याद आ जाती है। यही बात हजरत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि हम भूल जाते हैं लेकिन जब वो चीज सामने आती है तो उस वक्त के ऊपर हमको याद आ जाती है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फितने बयान फरमाए उसमें से बहुत से फितनों की बात हम भूल गए, लेकिन जब वो फितना अमली शक्ल में सामने आता है तो हमें हुजूर का वो बयान मुबारक याद आ जाता है कि हुजूर ने ये बात अपने बयान में इरशाद फरमाई थी। और उसको एक मिसाल दी हजरत हुज़ैफ़ा ने, कोई आदमी आपको मिला था कभी, आपका उससे ताल्लुक हुआ था, लंबा जमाना गुजर गया, मिलना सलाम कलाम मुलाकात बंद हो गई, काफी अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई उनके साथ लंबे जमाने के बाद, अब लंबे अरसे की वजह से आप उसको भूल गए थे, नाम भी भूल गए, शक्ल भी भूल गए, सूरत भी भूल गए, लेकिन कई सालों के बाद जब मुलाकात हुई तो आप कैसे कहते फौरन, ओहो आप तो फुला। जैसे कि दर्श के साथियों का हाल, मदरसे से निकलने के बाद कोई 10 साल बाद मिला, कोई 15 साल मिले बाद मिला, 20 साल, इतने जमाने में आप उसका नाम भूल गए, उसकी शक्ल सूरत भूल गए, या धुंधली धुंधली शक्ल सूरत याद थी ले और ये कि बिल्कुल भूल गए, लेकिन जब लंबे अरसे के बाद मुलाकात होती है तो फिर आप कहते हैं ना, अच्छा अच्छा आप फुला, हाँ, फिर वो याद दिलाएगा कि अपने दरसगाह में साथ बैठते थे, तकरार में साथ रहते थे, हम लोग साथ ये करते थे, तब जाके याद आता, अच्छा आप वो हैं। हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसे कि किसी की शक्ल सूरत हमारे सामने होती है, हमको याद होती है, लेकिन एक लंबे जमाने तक वो आदमी हमसे जब गायब रहता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उसको देखते हैं तो फिर उसकी शक्ल सूरत को हम पहचान लेते हैं। तो बाज मरतबा ये क्या होता है, इजमालन और मुबहमन मालूम था, फिर बाद में उसकी तफसील और तायीन होती है। बाज मरतबा ये होता है कुल्ली तौर पर इल्म होता है, फिर आदमी भूल जाता है, फिर याद आ जाता है। पूरी हदीस शरीफ का खुलासा ये है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बयान के अंदर कयामत तक जो फितने पेश आने वाले थे हजरत सहाबा को बयान फरमा दिए, ताकि सहाबा आने वाली उम्मत को वो फितने बतला देवे और उम्मत उस फितनों से अपने आप को बचाने की तदबीर इख्तियार करे। देखो फितने इसलिए नहीं बयान किए जाते कि हमको वो फितनों को अपनाना है और फितनों को इख्तियार करना है, इसके लिए फितने नहीं बयान किए जाते। फितने इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि उस फितनों से बचने की और हिफाजत की तदबीर हम कर सके, इसके लिए फितने बतलाए जाते हैं। गोया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल शफकत और मोहब्बत है कि हुजूर ने अपनी उम्मत पर यह भी एहसान फरमाया कि कयामत तक आने वाले फितने बयान फरमा दिए ताकि उम्मत अपने आप को बचा सके। तर्जमा कीजिए।